मस्जिद और उपासना।
प्रिय श्रोताओं, इस्लामी जगत में मस्जिद की अहमियत और मौजूदा दौर में इसकी रोल के मद्देनजर हमने एक नई कार्यक्रम श्रृंखला शुरू की है, जिसका नाम मस्जिद और उपासना है। इस कार्यक्रम में हम पवित्र कुरान की आयतों, पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों के कथनों व आचरण को आधार बनाकर मस्जिद की विभिन्न उपयोगिताओं के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार इस कार्यक्रम श्रृंखला में दुनिया की कुछ मशहूर मस्जिदों से आपको अवगत कराएंगे। यह कार्यक्रम स्वाति और सैयद मैसाम लेकर हाजिर हैं। आशा है पसंद करेंगे।
मस्जिद ईश्वर का घर और उसकी बंदगी का स्थान है। इस्लामी संस्कृति व विचारों में मस्जिद को हमेशा पवित्र स्थल माना गया है। ये पवित्र स्थल ईश्वर के भक्तों के लिए आस्था के उच्च चरण को हासिल करने का स्थान होने के साथ साथ ऐसा स्थान है जहां सबसे बड़े क्रांतिकारी व राजनीतिक फैसले तक लिए जाते हैं। इसी तरह मस्जिद को इस्लामी संस्कृति, कला व सभ्यता का गढ़ माना जाता है। ये ऐसा स्थान है जिसने लोगों में एकता व सहयोग की भावना पैदा की और उनके सामाजिक मामलों को सुव्यवस्थित किया।
मानव इतिहास अपने आरंभ से अब तक ईश्वर की उपासना की मिसालों से भरा पड़ा है। हालांकि विभिन्न जातियों में विभिन्न दौर में उपासना की शैली अलग रही है, लेकिन सबका सार एक रहा है और वह ईश्वर से संपर्क बनाना है, जो सृष्टि का रचयिता व सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के अंतिम व संपूर्ण धर्म के रूप में इस्लाम ने भी ईश्वर की निकटता हासिल करने के लिए उपासना के विशेष नियम व संस्कार पेश किए हैं। इन पवित्र संस्कारों में नमाज की बहुत ज्यादा अहमियत है, जिसे ईश्वर की उपासना की सबसे स्पष्ट मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है।
सभी ईश्वरीय व आसमानी धर्म, यहाँ तक कि मानवीय मत भी उपासना करने व विशेष समारोह के आयोजन के लिए एक स्थान को विशेष करते हैं। विशेष संस्कारों को अंजाम देने के लिए किसी स्थान को विशेष करना इतनी अहमियत रखता है कि मूर्ति पूजने वाले भी इस तरह का स्थान रखते थे जहाँ वे मूर्ति पूजते, बलि चढ़ाते व भजन गाते थे। और अभी भी ऐसा ही है। ईसाई गिरजाघर में, यहूदी सिनेगॉग में और जरतुष्ती या पारसी अग्निकुंड में उपासना करते हैं। लेकिन इस्लाम ने, जिसके कांधे पर पूरी मानव जाति के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी है, मस्जिद को मुसलमानों की उपासना के लिए विशेष किया है।
मस्जिद को मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां बंदा ईश्वर के सामने इस बात का इकरार करता है कि वह कुछ नहीं है। नमाज इस्लामी उपासनाओं में सबसे अहम उपासना है, जिसे अंजाम देने पर बहुत अधिक बल दिया गया है। और नमाज के विभिन्न संस्कारों में सजदा अर्थात जमीन पर माथा टेकने की खास अहमियत है। सजदा ईश्वर की उपासना का चरम बिंदु है, जिसके जरिए इंसान अनन्य ईश्वर की महानता के सामने अपनी तुच्छता का इकरार करता है। सजदा अनन्य ईश्वर के सामने सृष्टि की सभी चीजों की तुच्छता का प्रदर्शन है, जैसा कि पवित्र कुरान के नहल सूरे की आयत नंबर 49 में ईश्वर फरमाता है, जमीन और आसमान में जो कुछ चलने और रेंगने वाली चीजें हैं, और इसी तरह फरिश्ते भी ईश्वर का सजदा करते और घमंड नहीं करते।
सजदा बंदगी का प्रतीक है। सजदा सभी प्रकार की उपासनाओं, यहाँ तक कि नमाज के दूसरे भाग की तुलना में एक अलग शान रखता है। इसलिए मस्जिद का अर्थ सजदा करने का स्थान और नमाज ईश्वर की याद और उपासना है। मस्जिद को धार्मिक संस्कृति में ईश्वर का घर भी माना गया है। सृष्टि में जमीन और आसमान सहित हर चीज का वजूद ईश्वर से है, लेकिन ईश्वर ने मस्जिद को अपना घर कहा है ताकि इस तरह इंसान इस स्थान की अहमियत को समझे और वहां पर ईश्वर की ओर से मिलने वाली अनुकंपाओं से फायदा उठाए। यही वजह है कि इंसान मस्जिद में खुद को ईश्वर के ज्यादा निकट महसूस करता है। मस्जिद अपने दर्जे की दृष्टि से एक समान नहीं है, बल्कि कुछ मस्जिदों की अहमियत अधिक बताई गई है। जैसा कि पैगंबर इस्लाम के हवाले से रिवायत में है कि सभी मस्जिदों में सबसे अहम मस्जिद मस्जिदुल हराम है।
उसके बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, उसके बाद मस्जिद कूफा, उसके बाद मस्जिद अक्सा, उसके बाद हर शहर की जामा मस्जिद, उसके बाद मोहल्ले की मस्जिद और फिर बाज़ार की मस्जिद की अहमियत है। मस्जिद हराम की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि मुसलमानों पर अनिवार्य है कि अपनी नमाज इस मस्जिद व पवित्र काबे की ओर मुँह करके पढ़ें। मस्जिद हराम में नमाज का पुण्य दूसरी मस्जिदों की नमाजों की तुलना में हज़ारों नमाजों के बराबर है। जैसा कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, घर में नमाज पढ़ने से इंसान को एक नमाज के बराबर पुण्य मिलता है। मोहल्ले की मस्जिद में 25 नमाज के जितना पुण्य मिलता है। जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने का पुण्य 500 नमाजों के बराबर है। मस्जिद अक्सा में नमाज का पुण्य 5000 नमाजों के बराबर है। मस्जिद नबी में इसका पुण्य 50,000 के बराबर है और मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने का पुण्य 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर है।
امام محمد باقر علیہ السلام نے مسجد الحرام کی اہمیت کے بارے میں فرمایا ہے، جو کوئی اپنی واجب نماز مسجد الحرام میں پڑھے تو ایشور اس کی سبھی نمازوں کو، جب سے نماز پڑھنا اس پر انیواریہ ہوا ہے اور اسی طرح پوری عمر وہ جتنی واجب نماز پڑھے گا قبول کر لے گا۔ مسجد الحرام کے ساتھ ساتھ دوسری مسجدوں کی بھی بہت اہمیت ہے، جیسا کہ حدیث قدس میں ایشور کہتا ہے، زمین پر مسجدیں میرا گھر ہیں، جو آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتے ہیں جس طرح ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ دھنیہ ہے وہ جس نے مسجدوں کو اپنا گھر قرار دیا۔ دھنیہ ہے وہ بندے جو اپنے گھر میں وضو کریں اور پھر میرے گھر میں میری زیارت کریں۔ جان لو کہ مجھ پر ضروری ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں جو میری زیارت کرتا ہے۔ جو لوگ رات کے اندھیرے میں مسجد کی اور قدم بڑھاتے ہیں، انہیں پرلے کے دن ایک دمکتے ہوئے پرکاش کی شبھ سوچنا دیجیے۔
श्रोताओं, कार्यक्रम के इस भाग में आपको दुनिया की मशहूर व अहम मस्जिदों के बारे में बताएंगे, जिनमें सबसे अहम मस्जिदुल हराम है जो पवित्र मक्का में स्थित है। मस्जिदुल हराम इस्लामी इतिहास की सबसे पुरानी मस्जिद है। चूंकि पवित्र काबे को बैतुल लाहिम हराम कहा गया है, इसलिए इस मस्जिद को भी मस्जिदुल हराम कहा गया है। मस्जिदुल हराम का हमेशा से सम्मान होता रहा है। पैगंबर इस्लाम के कथन में कि सृष्टि की रचना के शुरू में पूरी ज़मीन पानी से डूबी हुई थी, वह पहला स्थान जहां सबसे पहले सूखी ज़मीन प्रकट हुई वह स्थान काबा है और ईश्वर ने इसी स्थान से ज़मीन को फैलाया। यही वजह है कि मक्के का एक नाम उम्मुल कुरा भी है। उम्मुल कुरा का अर्थ है बस्तियों की माँ। इमाम मोहम्मद बाकिर अली सलाम फरमाते हैं, जब ईश्वर ने चाहा कि ज़मीन को पैदा करे तो उसने चारों प्रकार की हवाओं को हुक्म दिया कि पानी को थपेड़े दे, यहाँ तक कि थपेड़े से झाग निकलने लगे और इस झाग को इस घर में इकट्ठा करे और एक टीला बनाए।
آل عمران سورے کی 96ویں آیت میں ایشور جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے پہلا گھر قرار دیا، وہ وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے، ایسا گھر جو پوری دنیا والوں کے لیے مارگ درشن اور برکت کا سروت ہے، اسی طرف اشارہ ہے۔ تو اس طرح زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنا وہ کعبہ تھا اور وہیں سے زمین کا فرش آگے بچھتا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، زمین پر سب سے اچھا استھان مکہ ہے، ایشور کے نکٹ مکے کی مٹی سے زیادہ کسی بھی استھان کی مٹی اتنی پریا نہیں ہے۔ مکے کے پتھر سے زیادہ کوئی پتھر پریا نہیں، مکے کے پیڑ سے زیادہ کوئی پیڑ پریا نہیں، مکے کے پہاڑ سے زیادہ کوئی پہاڑ پریا نہیں، اور مکے کے پانی سے زیادہ کوئی پانی پریا نہیں ہے۔
اسلامی جگت کے مشہور آتمگیانی محی الدین عربی اس پوتر استھل کے بارے میں کہتے ہیں، کوئی بھی ایشوری دوت اور ولی ایسا نہیں گزرا ہے جس کی اس گھر اور اس شہر سے کوئی یاد جڑی نہ ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و وسلم اس گھر کے بارے میں فرماتے ہیں، ایشور کی سوگند تو زمین پر بہترین بھومی اور ایشور کے نکٹ سب سے پریا ہے، اور اگر مجھے نکالتے نہیں تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ जो भी ईश्वर के इस घर को देखे लेकिन उसकी आस्था में वृद्धि न हो, तो इसका मतलब है कि ईश्वर के इस घर से उसने कोई बरकत हासिल न की, क्योंकि यह घर मार्गदर्शन व बरकत से भरा ईश्वर का घर है।
इस्लामी रिवायत के अनुसार सबसे पहले हजरत आदम ने काबे का निर्माण किया। हजरत आदम द्वारा बनाई गई काबे की इमारत के खराब होने के बाद उसी स्थान पर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल की मदद से दूसरी बार काबा बनाया। पैगंबर इस्लाम की पैगंबरी के ऐलान से पहले कुरैश कबीले वालों ने पैगंबर इस्लाम के निर्देश व सहयोग से काबे की पहले वाली इमारत के आधार पर दोबारा काबा बनाया। उस समय से अब तक मस्जिदुल हराम की अनेक बार इमारत बनी और इसका दायरा विकसित हुआ और विकास की यह प्रक्रिया जारी है। अलबत्ता ये बिंदु भी अहम है कि काबे की महानता उसकी सादगी में है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस समय जिनके हाथ में काबे की देखभाल है उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा निर्माण कार्य किया है, जिससे लगता है कि मस्जिदुल हराम का आत्मिक माहौल कम हो गया है। इस वक्त मस्जिदुल हराम के आसपास इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें और स्विमिंग पूल बन गए हैं कि अब ये स्थान पर्यटन स्थल लगने लगा है। हालांकि जहां भी कोई अहम धार्मिक या पुरातात्विक इमारत होती है उसके आसपास उससे ऊंची इमारत बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती।